विनीत ने अपना वॉलेट निकाला और गार्ड को गुलाबी नोट देते हुए कहा, जाओ लेकर आओ। गार्ड ने ओके सर कहा और वहां से भाग गया। आरवी ने उस तरफ देखते हुए कहा, चलो वर्तिका खुश हो जाएगी, मुझे नहीं पता था मेरी तरफ कोई और भी चॉकलेट के लिए इतना पागल हो सकता है। वैसे मैं भी ले आती ऑर्डर अपना, पर फिर सोचा कोई फिर गलत फहमी का शिकार हो गया तो, और मेरे बारे में सोचे कि ये भी प्लान होगा। ऑर्डर लेने के बहाने गेट तक गई और यहाँ से फोर हो गई। पर अब सोचना भी मत, बेफिक्र रह सकते हैं लोग, गेट खुला भी होगा तब भी यहाँ से नहीं भागने वाली मैं। जब तक अपने जिम्मे लिया काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसने टेढ़ी नजरों से अयांश की ओर देखा। ये सुन विनीत ने अयांश की ओर देखा। अयांश आरवी की ओर ही देख रहा था और उसके तानों को भी समझ रहा था। तभी गार्ड चॉकलेट बॉक्स लेकर आ गया। आरवी ने फट से चॉकलेट बॉक्स उसके हाथ से ले लिया। गार्ड विनीत की ओर बचे पैसे बढ़ाते हुए बोला, सर। तभी अयांश बोला, जाओ यहाँ से। गार्ड, सर वो, अयांश उस पर चिल्लाया, बोला ना जाओ। तभी आरवी मुस्कुराते हुए बोली, आप जाइए और ये बचे पैसे भी रख लीजिए, इनके पास बहुत पैसे हैं, वापस ना भी लेंगे तो पैसे का खजाना कम नहीं होने वाला, इनसे आप अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाना। गार्ड पैसे देखकर बोला, मेरे बच्चे नहीं हैं। आरवी, ओ तो बीवी तो होगी ना, और माँ भी, परिवार तो है ना, उनके लिए ले जाना और मिल बांट कर कुछ भी खा लेना। अब जाइए वरना इन पैसों के चक्कर में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसने अयांश की ओर इशारा किया। ये सुनकर गार्ड ने थूक निगला और एक नज़र अयांश को देख वहां से भाग गया। गेट के पास पहुंचकर उसने पैसों की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इन पैसों से माँ के लिए फल और बीवी के लिए मिठाई आ जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, वरना जो कमाते हैं उनसे सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशों की तो बारी भी नहीं आती हैं। धन्यवाद मैडम, उसने वहीं से आरवी की ओर देखा। आरवी हाथ में चॉकलेट उछालते हुए बोली, चॉकलेट खाएंगे मिस्टर मेहरा, खैर छोड़िए आपको मीठा कहाँ रास आएगा, राधे भैया को बोलते हैं आपके लिए करेले बनाते, सुना है जहर ही जहर को काटता है, क्या पता कड़वा करेला अंदर जो कड़वाहट भरी पड़ी है उसे मिटा दे। आरवी की ये बात सुन अयांश उसकी तरफ आने लगा कि आरवी फट से कदम पीछे लेते हुए बोली, विनीत जी आपको खानी हो तो अंदर आ जाना चॉकलेट, और हाँ मेरे प्रति नफरत है उसे अंदर दबाकर, गुस्से को बाहर छोड़कर ही आना आप दोनों, क्योंकि मुझे भले ही इससे फर्क ना पड़े पर वर्तिका पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये सड़ी सी शक्ल बाहर छोड़ स्माइल लेकर आना चेहरे पर, जो उसे भी खुशी हो, वरना अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, रह लीजिएगा शौक से बाहर, आई डोंट केयर। इतना बोल आरवी भागकर अंदर चली गई। अयांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। तभी विनीत अयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अयांश अब क्या करना है, क्या ये जो कह रही है उस पर बिलीव? तभी अयांश उसे घूरते हुए बोला, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, बिलीव इस पर कभी नहीं, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें और ये सब कर रही है, यूं बड़े बड़े भाषण देने से कोई गलत सही साबित नहीं हो जाता है, देखते हैं इसकी बातों में कितना दम है, जानते हो ना कथनी और करनी में फर्क होता है, पागल है ये लड़की, जुबान जितनी चलनी चाहिए उससे ज्यादा चलती है इसकी, इसके कुछ भी प्लान बनाने से इसका सच झूठ नहीं हो जाएगा, वर्तिका की हालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है और अब मैं इसे वर्तिका को और नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ जो ये सब बोल रही है शायद खुद को अच्छा और सही साबित करने के लिए ही, बोलती भी तो मीठी और ऐसे है कोई भी लपेटे में आ जाए, फिर दादू और दी का तो क्या ही कहें, पर दी को इससे अब दूर रखना आसान नहीं होगा, कितना मानने लगी है दी इसको और दादू भी इसका मान रहे हैं, अयांश दांत पीसते हुए बोला, तभी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ वरना इसकी औकात अभी दिखा देता, इसने जो रिस्क लिया वर्तिका को यहाँ लाकर और दादू को अपनी बातों में फंसाया है उसकी सजा अभी के अभी दे देता, बस वर्तिका और दादू को लेकर चुप हूँ, जानती है ये लड़की अच्छे से कि मैं दादू के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जा सकता हूँ, तभी उसने सबसे पहले दादू को टारगेट किया है और उसी के चलते इसकी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई है, हैरान होते हुए बोला, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो करना चाहती है वो करके रहेगी, दादू ने साफ साफ कह दिया और परमिशन दे दी इसको कि वही होगा जो ये चाहती है, अयांश विनीत की ओर देखते हुए बोला, तो करने दो मैं भी देखूं क्या क्या कर सकती है, पर डोंट वरी मैं नजर रखूंगा वर्तिका पर, इसकी वजह से अभी खरोच नहीं आएगी और दादू से भी एक बार बात करके देखता हूँ, एनीवे तुमको जाना है तो जा सकते हो, मैं हूँ यहाँ, नहीं तो यहीं रुक जाओ, मैं यहीं रहूंगा जब तक दी यहाँ है अयांश, विनीत ने साफ साफ कहा, ओके हो जाओ यहीं शिफ्ट, कहते हुए अयांश वहां से अंदर चला गया। तभी विनीत का फोन बजा और वो फोन निकालकर साइड में जाकर अपने फोन पर लग गया। आरवी किचन से पानी का जग लेकर निकली कि तभी उसकी नजर अयांश कर पड़ी जो दिनकर जी के कमरे से बाहर ही निकला था। अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देख आरवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ आपकी नहीं चल रही कि आप नहीं दादाजी पर? अब तो मान लीजिए मिस्टर मेहरा, आप ना उनका फैसला बदल सकते हैं ना ही मेरा इरादा, क्यों बेकार में कोशिश कर रहे हैं आप? अयांश उसके पास आया और एटीट्यूड वाले लहजे में बोला, जीती नहीं हो अभी तुम तो, अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आरवी जीत हो या हार कोशिश मुस्कुराकर करने में हर्ज ही क्या है, और हर चीज को जीत हार में बेनिफिट लॉस में तोलना बंद कर दीजिए, बिजनेस नहीं है आपका ये, जिंदगी है, यहाँ बुरा कुछ होता है किसी के साथ तो अच्छा भी होता है,
पैसों से ज्यादा यहाँ खुशी मैटर करती है। थोड़ा तो पॉजिटिव रहिए, इतना भी नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं। खैर जिंदगी छोड़िए, उसका तो शायद ही आपको मतलब पता हो। आपके बिजनेस की ही बात कर लेते हैं, एक वही काम तो करते हैं आप दिन रात, तो क्या वहाँ भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं? आरवी बोल रही थी कि अयांश बीच में ही बोल पड़ा, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी देखता हूँ, जिसमें मुझे फायदा हो वही मैं रिस्क लेता हूँ, बिजनेस हो या मेरी लाइफ, यही फॉलो करके मैं डिसीजन लेता हूँ। अगर मुझे लगे यहाँ हार है तो मैं उस काम में हाथ नहीं डालता, पर अगर थोड़े से भी चांस लगे जीत के तो उसे फिर मैं नहीं छोड़ता। ये सुन आरवी मुस्कुरा दी और सेम टू यू बोलकर वहां से चली गई। ये सेम टू यू अयांश को इतना चुभा मानो आरवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई हो। वो उसकी तरफ देख मन ही मन बोला, मुझसे खुद की कंपेयर कर रही हो ना तुम, देखता हूँ कितना कर पाती हो आरवी चतुर। नो आरवी मेहरा, वर्तिका को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, पर तुम जो ये हवा में उड़ रही हो ना, जल जमीन पर नहीं ले आया तुमको, तो मेरा नाम भी अयांश मेहरा नहीं। क्या बोला था तुमने, मुश्किलों को देख तुम कदम पीछे नहीं लेती, लेट्स सी सामने बढ़ती मुश्किलों को देख तुम्हारे कदम आगे बढ़ते हैं या पीछे, जल्द पता चल जाएगा। वेट एंड वॉच माई वाइफ, उसने तंज भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए। आरवी ऊपर पहुंची कि देखा विनीत उसके कमरे के बाहर खड़ा था। उसे बाहर खड़ा देख आरवी ने कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हैं आप, अंदर जा सकते हैं आप, आपकी ही बहन है ना, फिर क्यों कदम दहलीज पर रोके हुए हैं। विनीत आरवी की ओर देखते हुए बोला, पता है अंदर जा सकता हूँ, और बहन भी मेरी है, बस ती को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो सो रही है इसलिए बस बाहर से देख रहा था। परेशान मत होइए, वो ठीक है और खुश भी, आराम से सो रही है, वो भी बिना स्लीपिंग पिल्स के। मतलब, विनीत ने हैरानी से कहा, मतलब यही कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्स इनको नींद की दवाई देकर सुलाते थे, पर मैंने नहीं दी, दैट्स इट।
क्या तुम सच में पागल हो, दी को जब डॉक्टर्स दवा देते थे तो तुमने क्यों नहीं दी, उनको यहाँ ले आई, पर कम से कम मेडिसिन में तो अपनी मनमानी ना करो, वो तो दो उनको, विनीत परेशान होते हुए बोला। तभी आरवी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, रिलैक्स रिलैक्स, जो मेडिसिन जरूरी है वो मैंने दे दी है विनीत जी, आपकी दी की रिपोर्ट, स्टडी, मेडिसिन लिस्ट सब देखकर समझकर हर बात का ध्यान रखकर मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ वर्तिका का, जो देना चाहिए वो दे रही हूँ, बस नींद की दवाई नहीं दे रही हूँ, माना हॉस्पिटल में दी जाती थी पर यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत क्यों नहीं है, जब डॉक्टर दे रहे थे तो तुम कौन होती हो नहीं देने वाली, उनका अच्छे से सोना भी ज़रूरी है, जानती हो ना, तुम डॉक्टर हो दी की नहीं ना, विनीत आरवी को उस कमरे से थोड़ा दूर कर बोला। आरवी विनीत को घूरते हुए बोली, आप भी ना अपने दोस्त जैसे हो गए उनके साथ रहते रहते, बस जज कर लो ना, सुनना पूरी बात ना समझना, बस घोड़े के जैसे आगे आगे दिखता है, तीन साइड और भी होती हैं पता है ना, नींद की दवा ना दी, ये दिखा क्यों नहीं दी ये जाना, चलो और साइड ना सही, सामने ही देख लो वर्तिका कितनी प्यारी नींद ले रही है, आराम से अच्छे से सो रही है, माना मैं उनकी डॉक्टर नहीं हूँ पर कभी मैं भी डॉक्टर बनूंगी, होप सो, एनीवे अभी मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, अच्छा बुरा वर्तिका के लिए सब पता है, हॉस्पिटल में वर्तिका कोई एक्टिविटी नहीं करती थी तो थकती ही नहीं थी, तो नींद खुद कैसे आती, कोई गड़बड़ ना करे इसका ख्याल रखने वाली सिस्टर भी रात को चैन से आराम कर सके, तो वर्तिका को सुलाकर वो सब आराम फरमाते थे, पर मैंने आज वर्तिका को थका दिया, इतने गेम खेले उसके साथ कि माइंड और बॉडी दोनों को उसकी नींद की ज़रूरत पड़ी, वो भी बिना नींद की गोली के, पेट पर लेटते ही 5 मिनट में गहरी नींद हो गई, चलो माना आप सुबह तक ना उठे, आधी रात को उठ जाए, गोली जो नहीं ली, बट आई एम हियर, सीने पर हाथ रखते हुए, मैं संभाल लूंगी डोंट वरी, और हाँ मुझे मेरा काम समझाने की ज़रूरत नहीं आपको, ओके। ये सुन विनीत को सारी बात समझ आ गई, वो अपना माथा खुजाते हुए इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नज़र आयांश पर पड़ी जो सीढ़ियों के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तभी आरवी ने आयांश को देखा और बोली, सुन लिया है तो अच्छा है, वरना आप अपने दोस्त को समझा दीजिएगा कि वो भी बीच में ना आए ना ज्ञान दे, वरना फैसला नीचे अदालत में जाएगा, फिर किसी छड़ी किसका सिर सोच लेना। विनीत आरवी को घूरते हुए बोला, तुम दादू के नाम की धमकी दे रही हो हमें, आरवी टच करते हुए बोली, नहीं तो मैं तो बस बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ विनीत जी, मैं जानती हूँ वर्तिका के लिए क्या सही है, कम से कम जो मैं कर रही हूँ उसे शक की नज़र से तो मत देखिए, एक बार देखिए कमरे में जाकर, कोई मीठी नींद सो रहा है, होठों पर मीठी सी स्माइल लिए, जवाब खुद मिल जाएगा मैं सही कर रही हूँ या गलत। इतना क्या आरवी जाने लगी कि विनीत बोल पड़ा, ये तो बताकर जाओ आयांश ने कहा था दी ने कोमा से बाहर आते ही तुम्हारा नाम लिया, जब फोटो देखी तुम्हारी उसके बाद ये कंडीशन हो गई उनकी कि वो बच्चों से रहने लगी और सब कुछ भूल गई, फिर तुमको सामने पाकर नॉर्मल कैसे रहीं, कैसे वो तुम्हारे साथ इतनी कनेक्टेड हो गईं, कैसे तुम्हारे साथ घर चली आईं, कैसे तुम्हारी हर बात मान रही हैं, फोटो देखी तो आप आँख हो बैठी, दी को मेंटली अटैक आ गया था, अब तुम सामने हो साथ हो फिर भी वो, उसने आरवी की ओर मुड़ते हुए कहा, क्रमशः